Seeking to scale your business to new heights? Then you are at the right place. Malay Damania, Business Transformation Coach, is here to share valuable advice, tips and teachings on effective business management. Learn from the best to run a thriving business in these volatile environments. And for more interactive learning from Malay, sign up for his webinars happening every Sunday at 11 a.m. IST, where you can dive deeper into business transformation strategies. Registration link given in show notes. And now buckle up for some quick and actionable insights that will revolutionize your approach to business on Business Veda Podcast from your host, Malay Damania.
Hello friends, welcome to the Business Veda Podcast. Today we are going to have conversation with a very special guest. Friends, we have somebody who is been a participant at the Shark Tank. And this is the first time on this podcast platform that we have a participant from Shark Tank going to talk to us about his experience, about his product, the life after Shark Tank. Friends, we have founder and CEO of First Bird Organics, a homegrown brand that collaborates with farming community to create opportunities for micro entrepreneurships in rural areas, especially northeast, east, and the hilly areas. It gives me a great pleasure to welcome our friend Mitresh Sharma, who is a graduate in biotechnology and an MBA in marketing from Jamshedpur. Mitresh, welcome to Business Veda Podcast.
Hello, everyone.
So, Mitresh, we would like to know more about your journey. How did you start? और ये जो First Bird Organics का जो आइडिया है वो कहाँ से आया, कैसे आया? Tell us something about your journey.
So sir, I am based out of Devgar, मतलब मेरा home town Devgar है झारखंड में. It's a very small town in झारखंड. And my graduation is into biotechnology, which I did from Dehradun, from Chandigarh Rural University. तो biotech के बाद जब मैंने MBA किया, MBA basically मैंने NIM से किया था, New Delhi से. और उसके बाद आई वॉज इन टू डिजिटल मार्केटिंग. मैं एक जॉब कर रहा था, एक साउथ कोरियन मार्केटिंग एजेंसी थी उनके साथ में. तो वहाँ पे मैंने 2-2.5 साल जॉब किया और काफ़ी कुछ सीखा वहाँ पे, ऑनलाइन मार्केटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में. काफ़ी क्लाइंट्स के लिए काम किए, सेल्स में भी था, ऑपरेशंस में भी था. तो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स मतलब आ चुकी थी काफ़ी हद तक. तो अब ये स्टार्ट जर्नी मेरी यहीं से हुई है. तो ये कंपनी एक्चुअली अपने इंडियन ऑफिस को क्लोज कर रही थी और ये अचानक से हुआ. मतलब सब कुछ सही जा रहा था, स्मूथली जा रहा था और लाइफ भी सब कुछ सही था. जब आप कॉलेज से निकलते हो, आपकी पहली जॉब होती है, मंडे टू फ्राइडे था, 5-day कल्चर था, तो सब कुछ अच्छा था, घर में भी सब थे, खुश थे. तो 2-2.5 साल के बाद अचानक से जब पता लगा कि ये ऑफिस ही क्लोज कर रहे हैं, तो एक वो सेटबैक था मेरे लिए. मतलब सेटबैक इसलिए था, जॉब तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि यार अचानक से ये क्या हो गया. क्योंकि सब कुछ अब बिल्कुल कम्फर्ट हो और आपने कभी कोई फ्यूचर प्लान नहीं किया हो. मतलब मैं सेविंग्स भी नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एज ही ऐसा होता है कि आप जो भी करो वो सारा एक्सपेंस में चला जाता है. तो कभी वैसा प्लान करके नहीं किया था कि मुझे कुछ सेव करना है. और जब वो हुआ ना, तो मतलब हम लोग जितने भी कलीग थे और हम लोग मतलब वैसे हो गए थे कि यार ना सेविंग्स से है, हम लोग क्या करें अब. तो यहाँ से थोड़ा टर्निंग पॉइंट हुआ था. तो मेरा एक कलीग है रजनीश, तो मैंने और रजनीश ने प्लान किया कि हम लोग ना कुछ अपना ही करते हैं. तो प्लान ये था कि हम लोग ऑनलाइन सेल करेंगे. अब ये नहीं पता था करना क्या है, मतलब ये था कि चलो सेल करते हैं कुछ ऑनलाइन. तो यहाँ से बेसिकली एक आइडिया स्टार्ट हुआ कि हमें कुछ करना है. तो हम लोगों को जो भी 2-3 महीने का कॉम्पनसेशन वहाँ से मिला, हम लोगों ने वो लिया, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्म किया. तो फाइनली हम लोगों ने फिर, हम प्रोडक्ट में तो नहीं गए, सर्विस में ही गए. जो काम ये एजेंसी कर रही थी, हमने वही जो भी सीखा, एक छोटा सा ऑफिस लिया और इन लोगों से हम लोगों ने सेकेंड हैंड लैपटॉप्स ले लिए, कुछ प्राइस निगोशिएटेड प्राइस में, क्योंकि वो जा ही रहे थे एनीवे. और थोड़े फर्नीचर ले लिए, एक छोटा सा ऑफिस लिया ओखला फेज, ओखला में लिया था हम लोगों ने. और जो कि उस वक्त आई थिंक 8-8.5 हज़ार का एक छोटा सा स्पेस था, बहुत ही छोटा सा क्यूबिकल था. तो वहाँ से हम लोगों ने वायरल वेब शुरू किया. तो वायरल वेब में बेसिकली हम लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते थे. तो इनिशियली हमें 2-3 क्लाइंट्स मिले. पहला क्लाइंट तो हमारा दिल्ली में ही था, परिक्रमा है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है सीपी में. एक्चुअली वो भी गोल्ड ओशन का क्लाइंट था, वो हम लोगों ने लिया था जब वो कंपनी जा रही थी. तो उनको हम लोगों ने पिच किया और वो हमारे साथ आ गए थे. तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई थी. तो वायरल वेब भी हम लोगों ने 2-3 साल चलाया. उसके बाद फील हुआ कि मतलब कुछ ना प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं. कभी कभी क्लाइंट्स के पास कुछ आइडियाज लेके जाते हैं, वो इंप्लीमेंट भी नहीं होते. क्योंकि थोड़ा उनके भी कंस्ट्रेन होते हैं बजट के और भी कुछ। तो
राइट
यहाँ पे अब क्लियर था कि मतलब कुछ ऑनलाइन तो सेल करना है, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी प्लान किया था कि मैं टी शर्ट करना है, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। और थोड़ा ये भी था कि ये मेरा ना पहला बिजनेस वेंचर था, तो कुछ मिस्टेक्स भी किए थे मैंने यहाँ पे। मिस्टेक्स ये किया था हम लोगों ने कि हम लोगों ने ऑफिस ले लिया, थोड़े अपने फिक्स कॉस्ट बढ़ा लिए। अब दिल्ली में मैं भी खुद रेंट पे था, वो भी एक कॉस्टिंग था मेरे लिए। फिर हम लोगों ने टीम की साइज अचानक से बढ़ा ली, मतलब 8 से 10 लोग हो गए थे, जो मतलब आई थिंक 3 से 4 में भी हो सकता था। तो वो एक लर्निंग था कि पैसे एक्चुअली बचते ही नहीं थे, क्योंकि जो भी हमारे सारे एक्सपेंसेस में ही चले जाते थे। तो
जी
2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद मतलब प्लान किया कि अब शायद आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने क्विट कर दिया वायरल वेब, और यहाँ से फिर प्लान किया कि अब जो प्लान जो पहले सोचा था अब उसको एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे थोड़ा मैंने गैप भी लिया, अराउंड आई थिंक 1 साल का गैप था। 1 साल अभी मैं कोर्स होता एक कोर्स था PGPCM, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, वो किया मैंने। और वो भी ऐसे रैंडम, में ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे एक ऐड दिखा, मैंने क्लिक किया, अप्लाई किया, इंटरव्यू देने गया, हो गया, तो फिर मैं छोड़ के आ गया, फिर मैंने किया। तो कोर्स के बाद भी फिगर आउट कर रहा था कि करना क्या है। तो कोर्स के बीच में ना मैं काफ़ी NGO से भी मिला था, जमशेदपुर में भी और उसके अराउंड। तो आप ये फेस्ट वगैरह होते थे कॉलेज में या फिर आसपास, तो हम लोग जाते थे। तो बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो स्किन केयर में, या फिर आप देखोगे ना जो रूरल एरियाज में काम करते हैं स्मॉल वुमेन्स के साथ, आदिवासी लोगों के साथ, और वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनाते हैं। तो
जी
इसलिए आइडिया वहां से आया कि प्रोडक्ट्स को लेके हम लोग रीपैक करते हैं, रीब्रांडिंग करके सेल करते हैं स्किन केयर। तो एक्चुअली प्लान यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं था कि प्रोडक्ट एक्चुअली मेरा है क्या, मतलब वो बस प्लान था एक। तो थोड़े जब उन लोगों से बात की, थोड़े कॉस्टिंग का भी आया कि नहीं यार, मतलब वो ना मार्जिन नहीं बैठ हो रहा, मतलब सेट हो रहा था। तो फिर मैं यहाँ से दिल्ली गया, और दिल्ली में फिर मैंने काफ़ी एक्सप्लोर किया, क्लोथिंग में ही किया फिर से। तो क्लोथिंग में भी मुझे फिर समझ में नहीं आया, फाइनली मुझे वापस देहरादून ही जाना पड़ा, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी, क्योंकि वहाँ पे मेरे लोकल कनेक्शंस काफ़ी अच्छे थे। और मेरी अपने एक फ्रेंड से भी बात हो रही थी, वो जिसके बड़े जो भैया है, ही वॉज इन टू ऑर्गेनिक थिंग ओनली, मतलब वो जहाँ जॉब करते थे दे वर इन टू हनी, दे यूज टू एक्सपोर्ट हनी। तो उनसे काफ़ी नॉलेज मिला मुझे, काफ़ी कनेक्शन भी मिले, जहाँ पे मैं गया बात भी की मैंने। देहरादून में किसान लोगों ने, वहाँ भी गए हम लोग, वहाँ से फार्मर्स की थोड़ी लिस्ट ली, गवर्नमेंट बॉडीज से वो बहुत सपोर्ट किया उन्होंने भी। फिर काफ़ी मतलब किसान लोगों से भी मिले, काफ़ी वहाँ पे कम्युनिटीज से मिले। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट समझ में आए 2 से 3 महीने हम लोगों ने बहुत मतलब घूमा वहाँ पे। तो जो पहला प्रोडक्ट निकल के आया वो मेरा तुलसी ग्रीन टी था, और वो ऐसा टाइम था कि आई वॉज ऑल्सो इन टू वेरी यू नो आई वो मतलब मैं भी थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गया था, क्योंकि वो 5 से 6 महीना 1 साल का जर्नी ऐसा था कि आई वॉज डूइंग नथिंग। तो एटलीस्ट आई वॉज फोकसिंग ऑन माई हेल्थ, कि एटलीस्ट तुलसी
जी
ग्रीन थोड़ा फिट रहूँ, क्योंकि उससे थोड़ा मोटिवेशन भी आता है। रोज सुबह उठ के मैं दौड़ने चले जाता था, और थोड़ा उससे खुद को मोटिवेट करने के लिए भी। तो मैं उस वक्त ग्रीन टीज कंज्यूम करता था बहुत ज़्यादा। उस वक्त जो भी थोड़ा बहुत अपने लेवल पे रिसर्च किया, कीवर्ड वगैरह देख के, तो पता लगा अमेजोन पे अच्छा जाता है, तुलसी ग्रीन टी वगैरह अच्छा बिकता है। तो उस वक्त इतना कैलकुलेट नहीं किया था कि मार्जिन क्या है और ये क्या है, बस ये था कि करना है, वो पहला स्टेप लेना है। तो वो फिर हम लोगों ने ले लिया। तो यहाँ से तुलसी ग्रीन टी मतलब मेरा पहला SKU निकल के आता है, क्योंकि इनिशियली हम लोगों ने थर्ड पार्टी किया, इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने मतलब खुद से पैक नहीं किया था, इट वॉज अ थर्ड पार्टी, कम्प्लीटली थर्ड पार्टी। तो इस
ओके
बीच में कुछ कोर्सेज भी किए थे हम लोगों ने, मतलब मैंने टी के, और तो यहाँ से फिर और भी टीज आए हमारे उसमें ब्रांड में। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा सर्वे भी किया था मैंने, जिसमें पता लगा कि लोग ग्रीन टीज वगैरह क्यों पीते हैं, हर्बल टीज बेसिकली। तो हर्बल टीज में 3 रीजन सामने आए थे कि लोग इम्यूनिटी के लिए पीते हैं तुलसी, लोग हर्बल टीज 3 रीजन से ही पीते हैं, एक तो इम्यूनिटी, एक रिफ्रेशमेंट के लिए, और थर्ड इज फॉर वेट लॉस।
ओके
तो मेरे 3 टीज थे, एक तुलसी ग्रीन टी था फॉर इम्यूनिटी, पेपरमिंट लेमन ग्रास का एक हम लोगों ने ब्लेंड बनाया, दैट वाज फॉर रिफ्रेशमेंट। एंड थर्ड टी वाज स्लिम टी, जिसमें हम लोगों ने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले, जो कि नेचुरल फैट बर्नर बोल सकते हो आप, मतलब वो इन्हांस करते हैं, जैसे जिंजर हो गया, सिनेमन हो गया, इस तरह करके। तो यहाँ से 3 SKUs मतलब फाइनल होते हैं। तो मैंने तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से आई थिंक 1 लाख 1.5 लाख से शुरू ही किया था। पहला जो मेरा आई थिंक बैच साइज भी था अराउंड 500 डब्बे थे ग्रीन टी के, तुलसी ग्रीन टी का। तो वो जब लिया था तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए थे कि यार ये 500 पीस भी बिक जाए ना तो बहुत बड़ा है, और सुनते थे हम लोग अपने दोस्त दोस्त से, तो फिर ऐसा लगता था कि यार ये क्या मतलब क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि थोड़ा डिमोटिवेशन तो होता था, मतलब आ ही जाता है, लेकिन हम लोग मतलब बोलते थे नहीं नहीं होगा होगा, और वो हुआ भी। तो अब इनिशियल लेवल पर तो इतने ऑर्डर्स नहीं आते, जब अभी आप स्टार्ट करते हो शुरू के 3 से 6 महीने काफ़ी टफ होते हैं, इवन 1 साल भी टफ होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मतलब जहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। पहले तो ये था कि जब मैंने स्टार्टेड फ्रॉम देहरादून, तो मैं अपने फूफा जी के घर में रहता था, वहाँ से मुझे उनसे हेल्प मिला, क्योंकि रेंटल ऑलमोस्ट जीरो का। तो जब आप स्टार्ट करते हो, अगर आपका फिक्स कॉस्ट ही कम हो जाता है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। यही अगर मैं दिल्ली से करता तो आई हैड टू पे समथिंग, is one big saving. Or the support he gave me, I mean, matlab locally also was very, very good. Kuch friends the wahan pe local, unhone bahut support kiya. So when I started, one of my friend was with me, Gaurav Bhatt. So we both started initially. The first bird, Gaurav was also there. Okay. So after 6 months, due to some reasons, he had to quit. Matlab kuch apne personal reasons bhi the, aur kuch professional bhi the. So yahan pe then my mother came into picture company mein. So initially 6 months was a bit tough. Matlab wo revenue matlab aata nahi jaldi. क्योंकि आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो और कुछ हिट भी होते हैं कुछ नहीं भी होते हैं और वो 6 महीने ऐसे थे कि जब आप जॉब में होते हैं ना तो आपको आप यूज टू हो जाते हो पैसे के लिए कि आपको पता है कि एंड ऑफ द डे या मंथ में आपको एक फिक्स अमाउंट आने वाला है
एब्सोल्युटली
लेकिन जब आप बिजनेस में होते हो तो और वो भी जब स्टार्ट कर रहे हो तो एक मिस्टेक यहाँ मिलता है कि हम लोगों ने कोई बैकअप नहीं लिया हुआ था क्योंकि मेरी तो जॉब गए हुए बहुत टाइम मतलब जॉब के बाद मैं एक बिजनेस और कर चुका था तो एटलीस्ट वायरल वेब से जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो पहला मिस्टेक यही था कि एक चीज तो मुझे मेरा पेशेंस तो आ गया मेरे अंदर कि बिजनेस में वो इम्पेशेंट नहीं होना है कि आज सेल नहीं आया कल नहीं आया और मतलब पैनिक नहीं कर रहे थे हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे मतलब अपना काम कर दिया और फिर हम लोग बैठ गए रिजल्ट देखने के लिए और सेकंड था कि फिक्स कॉस्ट हम लोगों ने नहीं बढ़ाए जैसे मैं अपने रिलेटिव के उनके यहाँ पे रेंटल उस पे उनके घर पे था वो भी सेविंग था और भी मतलब बहुत सारे ऐसे फिक्स कॉस्ट थे जो इनिशियल लेवल पे हम लोगों ने नहीं किए इनिशियली जो पहला लॉट था आई थिंक वो पैक भी हम लोगों ने खुद भी किए बैठ बैठ के जो टीएस के ऑर्डर आते थे वो खुद से डिस्पैच भी करते थे पैक करके तो ऐसा कोई मैन पावर वाला कमिटमेंट नहीं था इनिशियल डेज में एटलीस्ट right. साल तो नहीं था तो वो थोड़ा और वो आइडिया ये भी था कि थोड़ा पहले प्रूफ कर ले अपने आप को मतलब किस हद तक जाता है ये तो वहाँ से थोड़ा फिर कॉन्फिडेंस आया तो यहाँ से जर्नी मतलब स्टार्ट हुई जो पहला सक्सेस मिला मुझे वो हनीस के लॉन्च से मिला में वी लॉन्च मल्टीफ्लावर हनी जिसको हम लोग पहाड़ी हनी बोलते हैं क्योंकि इट्स फ्रॉम हिली एरियाज एंड उस वक्त ये अमेजोन पे अराउंड 10-15 रैंक में था जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वहाँ से मतलब अच्छा मतलब महीने का 4-5 लाख आने लगा सेल वहाँ से मतलब थोड़ा आ गया कि नहीं अब तो करना ही है मतलब पहले भी था कि करना है लेकिन वहाँ से थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ गया कि अब अच्छे से थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे से करते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा मैन पावर भी किया हम लोगों ने कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज भी हायर की तो यहाँ से मतलब थोड़ा स्केल करना फिर शुरू किया विद टाइम अच्छा इम्पैक्ट आया कोविड के टाइम में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया था उस साल लेकिन जब फेज टू आया कोविड का वहाँ पे फिर से इम्पैक्ट हुआ इम्पैक्ट इसलिए हुआ कि मुझे खुद भी कोविड हो गया था और मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट सबको ही हो गया था तो हमारा ऑपरेशंस ना कम से कम 4-5 महीने मतलब उससे अफेक्टेड रहा तो मेरा वो साल बहुत फ्लैट गया और उसके बाद मैंने मतलब उसके बाद ही मैं अपने होम टाउन मैंने मूव किया क्योंकि एक वो पॉइंट भी था कि मतलब कोविड के बाद बहुत लोग अपने घर भी गए थे और थोड़ा वो भी अटैचमेंट भी हो जाता है कि चलो ठीक है घर पे ही रह के करते हैं और ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आ रहा था फिर सेल्स में एक जगह स्टेप हो गए थे तो कभी कभी वही होता है कि आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ स्टेप्स पीछे लेने होते हैं वही मैंने यहाँ पे किया फिर से अपने फिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए क्योंकि फिर हम लोगों ने प्रॉपर ऑफिस वगैरह सब ले लिया था देहरादून में थोड़ा फिर से एक मतलब प्रॉपर कॉस्ट आ गया था टीम का स्ट्रक्चर भी हो गया था लेकिन वहाँ से इम्पैक्ट होने के बाद आप बोल सकते हो कि थोड़ा मतलब सेटबैक भी आया क्योंकि रेवेन्यू डाउन हुआ वो महीने के 2-3 लाख पे फिर से आ गया और मतलब प्रॉब्लम्स आने लगी थी तो मतलब मूव करना ही सॉल्यूशन था बंद तो नहीं कर सकते थे तो फिर अपने होम टाउन आए वापस और फिर घर से किया मतलब वो साल चुपचाप बैठ के ही किया ताकि कॉस्ट जो भी है धीरे धीरे फिर से स्केल किया तो अगले साल तक ऑलमोस्ट सेम ही रहा ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे हम लोगों ने कुछ नए SKUs ऐड भी किए कुछ पुराने डिलीट भी किए ब्रांडिंग्स चेंज किए 1-2 बार बीच में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए वेबसाइट पे भी कुछ नए मार्केट प्लेसेस पे भी अमेजोन पे भी और कुछ ने कुछ हिट एंड ट्रायल किया उसमें से कुछ कुछ ने काम किया कुछ ने नहीं किया लेकिन मेजरली सबका रिजल्ट मुझे आई थिंक इस साल मिला है अगर मैं की बात करूँ ना तो बहुत सारे फैक्टर्स में सेल भी बढ़ा है क्योंकि कभी कभी आप कुछ करते हो टाइम लगता है रिजल्ट आने में और थोड़ा वो हुआ है मतलब कुछ कुछ मार्केट प्लेसेस से रिजल्ट आने में टाइम लगा है लेकिन वो आया है बाद में
श्योर सो मित्रेश योर जर्नी हैज बीन एक्सेप्शनली इंस्पिरेशनल स्पेशली फॉर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स and this has been full of struggle you know
that I'd like to say few things actually the budget which I started in na main ye bolna chahunga ki aur main is pe matlab bilkul hi confidently kehta hu ki agar abhi bhi kisi ko start karna hai na budget kam hai log bolte hain ki nahi nahi ho sakta main kaisa keh sakta hu ki hota hai aur packaging constraint batata hu main asli food industry mein na aap kisi bhi vendor ke paas jao manufacturer ke paas jao jo delhi mein baitha hai kahin bhi baitha hai wo aapko bolega 1000 MOQ chahiye 5000 MOQ chahiye tab jaake wo aapko supplies deta hai agar aapko proper टीम ग्रीन टीज के लिए बॉक्सेस चाहिए या किसी भी चीज के लिए चाहिए हम लोगों ने सारे सॉल्यूशंस किए मतलब एक होता है ना कि आप कम कॉस्ट में कैसे कर सकते हो अब हमारे पास टर्मरिक के पाउचेस हम देते हैं यूज करते हैं टर्मिनल को फिल करने के लिए। अगर मैं डिजिटली प्रिंट में जाऊँ तो अभी तो खैर बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है, उस वक्त नहीं थे। आपको वेंडर्स बोलेंगे 10,000 पीस प्रिंट कराओ या 20,000 पीस प्रिंट कराओ, तो उतना क्वालिटी प्रिंट नहीं करा सकते क्योंकि उतना तो मेरे साल का ही वॉल्यूम नहीं था। मैं करा भी लूंगा तो मेरे लिए पड़ा होगा, क्योंकि हम लोग जिस स्टेज में हमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी करने होते हैं ब्रांडिंग में। तो वहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लेके हम लोग फिर स्टैटिक प्रिंट में जाते थे, वो जो स्क्रीन प्रिंटिंग वगैरह होता है, कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज किया। वो 1 रुपए का प्रिंटिंग का आता था 5-6 रुपए पाउच के, तो यहाँ पे मतलब कॉस्टिंग भी कम हुई है। तो पैकेजिंग पे समथिंग है कि मतलब हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो अटकते हैं, तो मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ कि आराम से मतलब हो सकता है, कम कॉस्ट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, बस थोड़ा सा आपको लगाना है इधर उधर और हो जाता है वो।
So this has been a truly inspirational story for any startup entrepreneur. Job से शुरू किया, company बंद हो गई, वो time पे लगा कि ये problem होगा, but eventually proved out to be a blessing in disguise.
Yes.
And then you got on with your journey. Of course, I think there are a lot of takeaways ke mistakes is going to be an inevitable part of the journey. But yeah. What you actually embraced the mistakes and you learned from your mistakes and kept getting better. And when you go with conviction, when you have passion to do something, I'm sure the ecosystem around us, you know, somehow we get help, as you got help from your Fuaji and your friends and all of that. So that was truly, truly inspiration. I like one specific point is that you kept your fixed cost low.
Right.
Very, very important in the initial stage of our journey that we've got to keep our fixed cost as less as possible. And also the fact that you kept patience, right? It's not about ke aaj kuch kiya to mujhe kal result milega.
Right.
You focused on the process and not necessarily on the result.
Right.
Great. Mitrish, I want to know, as you said that, you know, you come from a smaller town, a job thi, fixed income the. फैमिली एक्सपेक्टेशन रहती है, हमारी खुद की तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि भाई एवरी मंथ वी नीड दैट मनी कमिंग इन आवर बैंक अकाउंट फॉर आवर सिक्योरिटी सेफ्टी एंड फॉर ऑल आवर एक्सपेंसेस, बट फैमिली ऑल्सो हैज एक्सपेक्टेशन। एंड व्हेन यू जंप टू एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्वियसली द इनकम वॉज वोलेटाइल, हाउ डिड यू मैनेज फैमिली एक्सपेक्टेशन पर्टिकुलरली?
सर यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है कि व्हेन आई वाज इनटू माय जॉब, जो फर्स्ट जॉब है, तो माई फादर ऑलवेज यूज टू टेल मी कि कितना है, मतलब कितना मिलता है वहाँ पे। तो सब जो भी था तो आई यूज टू टेल, तो वो बोलते थे कि यार आ जाओ बिजनेस करो। तो मैं बोलता था कि करूँगा यार, मतलब क्या करूँ। बोलते थे मैं करा दूँगा, कुछ भी करो, फ्रेंचाइज करो, ये करो, मेरे होटल यहाँ पे आके बैठ जाओ। मतलब यू यूज टू टेल मी कि बिजनेस करोगे, हो सकता है तुमको 2-3 साल नहीं मिले, 1 साल तुमको बहुत मिल जाए। मतलब वो मुझे हर दिन, ऐसा कोई दिन होता नहीं था कि वो मुझे बोलते नहीं थे कि जॉब छोड़ दो। और जब मेरा वो कंपनी बंद हो गया तो मुझे पहला कॉल उनका ही आया दिमाग में कि वो ऐसे बोलते थे। तो इस तरह थोड़ा बहुत आप इसको सपोर्ट भी बोल सकते हो कि सपोर्ट ऐसे तो था, मतलब कि बिजनेस करना है तो ये सोच के मतलब वायरल वेब शुरू भी किया। हालांकि वो 2 साल थोड़े टफ थे हम लोगों के लिए, क्योंकि टफ इसलिए थे कि अगेन वो मेरा पहला जॉब गया, फिर मैं उसमें गया, तो थोड़ा इशू तो आता है, मतलब मॉनिटरी तो इशू आता ही आता है। वो हम लोगों ने मतलब किसी तरह फेस किया। तो उसके बाद वो फिर मेरा फेज आ गया मैरिज वाला, तो वहाँ पे भी आपके पास एक सर्टन इनकम होना चाहिए, नहीं तो आपको पता है कि वो प्रॉब्लम्स आती हैं। और एक अच्छा पार्ट ये था कि फैमिली के एंड से यहाँ पे सपोर्ट मिला है बहुत ज़्यादा, फादर के एंड से भी, मदर के एंड से भी, और बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आया कि बंद कर दो, ये क्या कर रहे हो, बंद कर दो। इनिशियल डेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरे लिए। और थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो होता ही, एक स्टेज के बाद आता है वो, जब 2-3 साल हो जाता है, जब लगता है कि यार अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तब कभी कभी ऐसा होता है कि क्या करें, जॉब कर लें क्या, मतलब जॉब पे जाना चाहिए। तो ऐसे थॉट्स आए थे मुझे, ऐसा नहीं कि नहीं आए थे, ये कोविड के बाद आया था एक बार जब ये फ्लैट हो गया पूरा। लेकिन फिर मैं यही सोचता था कि यार 3-4 साल दिए हैं, और अगर अभी चला जाऊंगा तो फिर ये मतलब ये सारा बेकार है। और मुझे, मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझे पता है ना, अगर मैं जॉब में चला भी गया ना, मैं फिर छोड़ के आके दोबारा यही करूंगा, मतलब वो मेरे दिमाग से जाएगा नहीं कि मतलब मैंने इसको आधा छोड़ दिया। तो पॉइंट ये कि मतलब मैं ये चाह रहा था कि अगर मैंने कुछ स्टार्ट किया है तो उसका एंड रिजल्ट अच्छा हो, मतलब वहां तक लेके जाऊं, बीच में नहीं भागूं। मतलब तो यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट भी था, एक्सपेक्टेशंस थे मतलब ऑब्वियसली, लेकिन वो ना मैं मीट नहीं कर पाया शुरू के 2-3 साल। मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि उसको मैंने पूरा फुलफिल किया अपने एंड से, वो नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे फैमिली में, मतलब फैमिली ने सपोर्ट किया है मुझे।
बट गेटिंग सच सपोर्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स स्पेशली इज सो क्रिटिकल एंड क्रूशियल फॉर आवर सक्सेस।
आई मीन बीच में आने के रिकॉग्निशंस पहले भी मिले थे कुछ, लेकिन वो अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट होता है उसका बिजनेस का, लेकिन अभी दे आर वेरी वेरी हैप्पी।
Very good. I'm so happy. And thanks to your parents and such a great support that they have been for you in this journey. Of course, I will come to your mother. But I want to know your first, but organics. You're talking more about the organic and healthy kind of food.
Mm-hmm.
How is that different from other brands who also claims that, you know, this we don't have those artificial flavors and all of that? So what is that unique thing about your brand?
There are two to three major factors. So we only don't say that, you know, we are giving natural products or organic. We claim certain validations. Just say Lacadong turmeric case mein, we say that it has high curcumin content. So basically, Lacadong is a variety of turmeric that is from Meghalaya, and it has high curcumin content. So is yahan pe testing reports bhi dete hain, aur ye hum matlab apne websites pe bhi hum logon ne diye hue hain. Abhi hum logon ne saffron source kiya hai Kashmir se, to Kashmiri saffron mein kya hai ki crocin content kafi high hota hai. So again we claim this. So yahan pe thoda differentiation set kiya hai hum logon ne in terms of jo main ingredients hai jisse aapko benefits milta hai, wo hum highlight karte hain us cheez ko. हम ऐसा मतलब झूठा क्लेम नहीं कर रहे. और किसी किसी केस में जैसे हमारे प्रोडक्ट्स किन के लिए है, जैसे मैंगो पिकल है, तो मैंगो पिकल होममेड मैंगो पिकल हम बोलते हैं उसको. तो जब होममेड बोलते हैं तो कम्प्लीटली होममेड है वो, मतलब उसमें कुछ भी बाजार का नहीं है. वो पूरा प्रोसेस ही इंटायरली कम्प्लीटली होममेड, नथिंग, नो आर्टिफिशियल, नथिंग, कुछ भी प्रिजर्वेटिव तक नहीं होता उसमें. और पूरा बनने का समय हमारा 1 से 1.5 महीने का होता है उसमें, जो कि नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है. बिल्कुल प्रॉपर सन ड्राई करते हैं उसको, जितना उसका टाइम ड्यूरेशन है वहाँ तक. तो और ये प्रोडक्ट्स किसके लिए, जो खुद अचार नहीं बना पा रहे, जो बड़े शहर में जिनके पास टाइम नहीं है कि वो पुराने अपने दादी या दादा के मेथड्स को करें, तो ये प्रोडक्ट्स हमने उनके लिए बनाए. तो हमारा सेट ऑफ कंज्यूमर यहाँ पे डिफाइंड है. तो हम लोगों ने जब शुरू ही किया था तो ये सोच के किया था कि हम लोग ना प्राइस में नहीं खेल सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो अगर कमर्शियल लेवल का अगर वो हमसे प्राइस में कॉम्पीट करेंगे तो हमें उस वक्त बाहर कर देंगे. अगर मैं अमेजोन पे लिस्ट कर रहा हूँ, कोई ब्रांड 250 का दे रहा है, मैं 230 का दूंगा, तो मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा उस वक्त. तो आइडिया ये था कि उस लड़ाई में जाना नहीं है, क्वालिटी देना है और थोड़ा प्राइस को अच्छा रखना है. तो ये इनिशियली मतलब सेट था उस वक्त. तो हम लोगों ने मतलब ये स्ट्रेटजी अपना के शुरू किया था और ये काम भी किया है.
श्योर. सो यू आर सेइंग व्हाटएवर यू आर क्लेमिंग इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर डिलीवरिंग.
यस,
वी बीन वेरी ऑनेस्ट एंड अपफ्रंट इन व्हाट योर कस्टमर्स कैन एक्सपेक्ट.
एक स्टेज के बाद बैच साइज काफी बड़ा हो जाए, और ये भी हो सकता है कि हमें और भी फिर अपने मेथड्स को और इम्प्रूवमेंट की जरूरत होगी उस वक्त. लेकिन इतना तो अश्योरिटी है कि हम लोग जो सोर्स कर रहे हैं, जहाँ से ला रहे हैं, तो उसकी गारंटी हम लोग लेते हैं. क्योंकि हमारे में हम जहाँ से सोर्स भी कर रहे हैं, हमारे चेन काफी सिस्टमेटिक है. हम एक तो डायरेक्टली फार्मर से करते हैं, हम कोई भी मिडिल मैन को करते नहीं है. हमने वो सारा साइकिल में उनको हटा के रखा हुआ है. हम किसी थर्ड कंपनी से नहीं करते, यहाँ पे डायरेक्ट एसोसिएशन फार्मर्स के साथ है. तो क्वालिटी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट हमारे ऐसे ही हैं जो सीधा फार्म से ही आते हैं.
right.
और मिनिमल प्रोसेसिंग है उसमें, मतलब जो आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की बात करते हो ना, आपको वो दिखेगा उसमें.
सो क्रेडिबिलिटी इज अ बिग फैक्टर.
यस,
फॉर योर कंपनी. एक्सेलेंट.
हैव यू गॉट योर कॉपी ऑफ बिजनेस चैंप येट? इफ नॉट, गो अहेड एंड ग्रैब दिस Amazon bestseller by Malay Damania. It is a complete roadmap to transform your business. Thousands of business owners have already benefited from the book. Get your copy now from the link in show notes.
So, Mitesh, audience wants to know about your Shark Tank experience, of course.
Yeah.
Firstly, I want to know, you know, how did you get there? Aapka kaise wahan, how did you get this opportunity to appear on Shark Tank platform? क्या प्रिपेरेशन किया, यू नो, टेल मी समथिंग बिफोर यू रीच टू दैट.
ये मेरा सेटबैक वाला पीरियड था कोविड के बाद में. तो मैं उस वक्त देहरादून में ही था, और जब मैं अपने होम टाउन आया तो मैं टीवी देखता नहीं था कभी, मतलब मुझे टीवी का उतना हैबिट भी नहीं है. तो मैंने मिस कर दिया season 1 कब आया मुझे पता नहीं चला, प्रोमो कब आया और एप्लीकेशन कब आए. तो जब एक्चुअली मैं टीवी पे एयर हुआ ना, तो मुझे बहुत वो अफसोस हुआ अंदर से कि यार मैंने अप्लाई क्यों नहीं किया season 1 में. और मैं रोज एपिसोड देखता था और मैं सोचता था कि यहाँ पे जाना है, लेकिन बस ये सोच के चलो ठीक है नेक्स्ट सीजन तो करना है, मतलब जाना ही है. क्योंकि season 1 में कुछ एक दो लोग गए थे जिनको मैं जानता भी हूँ. एक जैन सिकंजी से गए थे, तो वो मेरे फ्रेंड का छोटा भाई है अभिनव, और एक दो स्टार्टअप और थे. तो मुझे लगता था कि यार मतलब एक नहीं होता, एक आपको गोल दिख जाता है, चलो ठीक है अभी आप सेटबैक में हो, आपका चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं जा रही लाइफ में, और आपको एक विजन मिल जाता है कि चलो कम से कम यहाँ पे एक रास्ता मिल गया, अब यहाँ तक तो जाना है। तो वही हुआ था, तो सीजन वन में हुआ, मतलब सीजन वन मैंने देखा नहीं, फिर मैंने सीजन टू में भी अप्लाई किया था। तो सीजन टू में कुछ इनिशियल राउंड तो क्लियर हो गए थे, लेकिन फाइनल राउंड तक तो हम लोग नहीं गए थे। और सीजन थ्री में फिर से किया, मतलब कि इस बार हो जाए, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ हुआ था तो हो गया मतलब। और बहुत अच्छा रहा, प्रिपरेशन से की थी कि जो भी पुराने मतलब मेरा एक्सपीरियंस था, जो भी मैंने पहले के एपिसोड्स देखे थे, उसके बेसिस पे मैंने कुछ चेंजेस किए। जैसे हमारे पास ना टीज के काफ़ी सारे एसकेयूज थे, तो हम लोगों ने उसको हटाए। और ब्रांडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, मतलब क्योंकि जब शुरू किया था तभी इतना ध्यान दिया नहीं ब्रांड गाइडलाइंस पे, और इस पे लोगो बना हुआ है, टी के पूरे डिजाइन ही अलग है, टर्मरिक स्पाइसेस का कैटेगरी का पूरा आपको ब्रांडिंग अलग दिखेगा, हनी का अलग दिखेगा, तो कुछ यूनिफॉर्मिटी नहीं था। तो वो चेंज किया सबसे पहले, और ये भी दो बार हुआ है, मतलब एक बार किया तो पसंद नहीं आया, मतलब वो फिर दोबारा किया उसको, फाइनली जाके अब जाके मतलब जाके ये सही हुआ। थोड़े रेवेन्यूज में भी जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो अच्छे नहीं थे, उनके रिजल्ट आए जब बाद में, तो वहाँ से भी इम्प्रूवमेंट आया थोड़ा। तो आई थिंक इस साल थोड़े हम लोग वेल प्रिपेयर्ड थे, बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ प्रिपेयर्ड थे पहले से।
ओके ग्रेट ग्रेट। एंड यू स्टडीड योर नंबर्स, क्योंकि पता था कि वहां पे तो सब
नंबर्स। हाँ, तो इसमें नंबर्स का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम भी वहां जाते हैं ना, तो हम भी शार्ट्स को फर्स्ट टाइम ही देखते हैं जब वो गेट्स ओपन होते हैं। और वहां पे ऐसा होता है कि आप अपना बस वो पिच तैयार करके जाते हो 2 से 3 मिनट का, जब आप जाते हैं आप डिलीवर करते हो, उसके बाद में कुछ भी आपके हाथ में नहीं होता, मतलब वो बिल्कुल फ्री कन्वर्सेशन है, और वहां पे कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। तो आप तैयारी खैर कितने भी कर लो, लेकिन आपको बेसिक तो पता होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस आपने किया है, आपका बिजनेस है, तो वो तो आपको आना ही चाहिए कि आपके नंबर्स क्या है, आपके प्रॉफिट लॉस क्या है, आपका आप किस कैटेगरी में हो, मार्केट साइज क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है, मतलब ये बेसिक है, ये तो हर हर एपिसोड में भी पूछा जाता है। और तो अगर ये आपने इतना भी कर लिया और कुछ और भी एपिसोड तो क्योंकि तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन आते हैं, मतलब अगर आप वो भी अच्छे से कर लेते हो तो आई थिंक हो जाता है कवर। बाकी वहाँ पे क्वेश्चंस का कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वहाँ पे सब कुछ फिर ऑन द स्पॉट ही होता है कि आपका आपका ह्यूमर कैसे काम कर रहा है, आप क्या जवाब दे रहे हो नहीं दे रहे हो, फिर टोटली वहाँ पे है। तो लास्ट मोमेंट पे फिर मैंने तो छोड़ दिया था अब कि वहीं जाके देखूंगा, क्योंकि इतना पता है कि मुझे अपनी जर्नी पता है 5-6 साल की, मैं यही सोच के गया था कि मतलब मुझे तो अपने हिसाब से बताना है, कुछ वो कॉपी पेस्ट करके और वो पढ़ के नहीं देना है वहाँ पे, तो मैं उसी तरह गया था।
मुझे तो जो है वो बताना है, तो
क्योंकि मेरा जर्नी अच्छे से, मतलब मेरी लाइफ तो मैं ही बता सकता हूँ ना, मतलब कुछ हो सकता है कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस मतलब पूछ ले, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो मुझे शायद नहीं आते थे, तो मैंने क्लियर बोल भी दिया था कि मतलब मुझे इसका नहीं पता है, मैंने एक्चुअली वहाँ घुमाया नहीं जाता, और आंसर्स जो मैंने दिए भी वो मैंने ज्यादा लंबा खींचा भी नहीं है, मैंने जो दिया मतलब जितना था उतना ही देखे चुपचाप चुप हो गया था मैं, तो मतलब मैं उस पर क्लियर था कि मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ पुराने एपिसोड्स भी देखे थे, तो मतलब वैसा कुछ उस जोन में नहीं जाना था मुझे, जहाँ पे फालतू का डिस्कशन हो और वो कुछ बोले और फिर मैं उनसे बहस करूँ, तो बेटर है कि जो आ रहा है आप बोलो, जो नहीं आ रहा है आप बोल दो कि मुझे नहीं आता है।
तो क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो?
तो बहुत अच्छा था,
मतलब
मेरे लिए तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, मुंबई ऑडिशन के बाद में ये गया था और मम्मी साथ में थी, तो बहुत मजा भी आया। हम लोग गए तो शुरू में थोड़ा तो नर्वस होता ही है, क्योंकि मतलब बिल्कुल फर्स्ट टाइम है, कभी ऐसे कैमरा भी फेस नहीं किया, तो टीम बहुत अच्छी है, मतलब उनकी बहुत ही कंफर्ट कर देते हैं वो अच्छे से सेट्स पे भी, और काफ़ी अच्छे से हम लोग मतलब जो भी हमारे बिजनेस मॉक्स थे तैयारी काफ़ी काफ़ी अच्छे हद तक अच्छे से हुई, लेकिन फिर भी एक अंदर से होता है आपको पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि आपको एक्चुअली आपको पता होता है कि ये टीवी पे आने वाला है, तो थोड़ा आप कॉन्शियस हो जाते हो नहीं चाहते हुए भी, लेकिन फिर भी वो सारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मैं तो कहूँगा कि शायद लाइफ लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है, और अभी वापस आने के बाद ऐसा लगता भी है कि मतलब शायद ये हुआ है कि नहीं हुआ है, सपना ही था,
क्योंकि जैसे लगता है
को देखा है तो एक्चुअली वो बिलीव नहीं है कि आप वहाँ गए थे, और जब ये एपिसोड भी आया तो फिर मतलब मैंने ये सोचा भी था कि जब आएगा तो मैं देखूंगा नहीं, एक्चुअली मैं रूम में चला जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम खुद को ऐसे देखने में थोड़ा वो फील, लेकिन फिर मैंने बैठ के पूरा देखा है कि नहीं देखू तो सही कि मतलब वहाँ हुआ क्या है।
जी जी, तो वहाँ पूरा लाइव ही एपिसोड दिखाया टीवी पे या वो कुछ कट होते हैं रीटेक होते हैं?
थोड़े से बड़ा होता है टीवी पे, एयर टाइम का थोड़ा कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि एक एपिसोड में 2 से 3 स्टार्टअप्स आते हैं, तो आई थिंक थोड़ा वो शॉर्ट हो जाता है फिर,
थोड़ा शॉर्ट। और बाकी कुछ कोई बैक स्टेज सस्पेंस कैसे, हम लोग तो जो दिखाते हैं वही देखते हैं,
तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब अब वही था
ड्रामा सस्पेंस कुछ होता है ना, जैसे
ऐसा कुछ भी नहीं होता,
सुनते हैं रियलिटी शो में बहुत सारा
चीज, ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इसमें कि आपको अपने नंबर्स पता होने चाहिए, आपको अपना बिजनेस पता होना चाहिए, तो उस पर आप थोड़ा क्लियर रहो, टीम आपसे बात करते रहती है कि आप तैयार हो, आप बस आप पिच पे है, पिच आपको तैयार करनी है। अगर आपने वो नहीं किया, आप वहाँ जाके भूल जाओ तो बात अलग है, लेकिन ऐसा ऐसा होता नहीं है। शार्क्स भी हम फर्स्ट टाइम ही देखते हैं जब वो गेट्स ओपन होते हैं, उससे पहले हम भी शार्क्स को देखते नहीं है वहाँ पे ऐसा। तो मतलब वो ओवरऑल अच्छा था, जब हम लोग पिच दे के आए मतलब वापस भी आ गए होटल रूम में, तो मैं नॉर्मली ऐसा तो बहुत जल्दी 8-9 बजे तक सो ही जाता हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ 4-5, लेकिन मैं उस दिन वापस आके मुझे लगता है कि मैं 1-2 बजे तक जगा हुआ ही था, और मैं मतलब बिल्कुल अलग जोन में था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जो सोच के आए थे ना, वो हम लोगों ने अचीव किया है यहाँ पे।
ओके ग्रेट, आई कैन सी दैट सैटिस्फेक्शन ऑन योर फेस। सो
एक्चुअली हम लोग प्लान करके गए थे कि मतलब जा रहे थे दूर से, तो मतलब डील तो लेना है, और सबसे अच्छी बात है कि रितेश से आया वो भी, और वो बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट रहा है इसका।
राइट, सो यू गॉट 50 लाख फ्रॉम रितेश, राइट? क्या प्लान है अभी आगे?
सर प्लान्स मोस्टली तो ग्रोथ और एक्सपेंशंस में ही है, जहाँ जहाँ पे हम लोग नहीं है फिर नहीं कर रहे। पहला प्राइमरी गोल उन मार्केट्स को कवर करना है, और मेन थोड़ी स्ट्रेटजिक लेवल पे हेल्प लेनी है इन टर्म्स ऑफ अगर ब्रांडिंग को थोड़ा रिस्ट्रक्चर करना हो, टीम साइज, या फिर कुछ अच्छे डिसीजन ऐसे मतलब लेवल पे कुछ प्लानिंग्स करनी हो, तो थोड़े वहाँ पे मुझे थोड़ा सा हेल्प चाहिए होगी, जो मैं उनसे डिस्कस भी करूँगा। लेकिन प्राइमरली मतलब सेल्स को ही बढ़ाना है, चाहे वो B2B में हो या फिर हम जिस प्लेस पे, जैसे ऑफलाइन हमारा भी मिनिमल है, तो यहाँ पे इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। और एक पार्ट ऑब्वियसली इसमें SKUs का भी है, थोड़ा इन्वेंटरी मैनेजमेंट भी एक टास्क होता है हमारे लेवल पे, क्योंकि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है तो थोड़ा पार्ट उसमें भी जाएगा।
हाउ मच रितेश इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर यू, यू नो, जस्ट टू हैव सम डिस्कशन और सम
जी
स्ट्रेटेजी?
आई मीन मैं उनकी टीम के टच में हूँ ऐसे, तो कभी ऐसा कुछ भी इशू आता है तो आई थिंक रिप्लाईज बहुत जल्दी आता है, तो वैसा कोई बहुत बड़ा वैसा फैक्टर नहीं है कि अवेलेबिलिटी का, वो हो जाता है। मतलब कुछ भी आपके कंसर्न्स है तो आप रीच आउट कर सकते हो।
करेक्ट, बिकॉज आई नो दैट वन ऑफ द मेन रीजंस दैट यू नो पीपल डू वॉन्ट टू गेट शार्क ऑन बोर्ड, ऑफ कोर्स मॉनिटरी पार्ट इज जस्ट वन पार्ट, बट
वैल्यू एडिशन इज मोर
द
इम्पोर्टेंट,
स्ट्रेटेजिक एंड यू नो गाइडेंस एंड सपोर्ट दैट यू गेट फ्रॉम
वैल्यू
देम।
वैल्यू एडिशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई थिंक आई डोंट थिंक ये सिर्फ पैसे के लिए कोई जाता है, मार्केटिंग इज वन ऑफ द रीजन विच ब्रांड्स गो ऑब्वियसली। सेकंड इज फॉर जो आपको वैल्यू एडिशन मिलता है ना, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि अभी तक आप समझो कि मैं खुद से कर रहा था, मतलब मैं अपने रिसोर्सेज पे कर रहा था, कोई मतलब गाइडेंस नहीं था। अब मुझे इतना पता है कि चलो मेरे पीछे कोई खड़ा है, तो अगर मैं कोई डिसीजन ले भी रहा हूँ तो आई नो कि समवन इज देयर टू गाइड मी, तो आई कैन ऑब्वियसली गो टू हिम एंड आस्क हिम फॉर सर्टन कनेक्शन या फिर चैनल्स। और स्पून फिडिंग तो कोई भी नहीं कराएगा कुछ लेवल पर, कोई कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया, आप कुछ करके आगे आए हो, तो आई डोंट थिंक ये बिजनेस में स्पून फिडिंग होगा भी। मतलब ऑब्वियसली आपको कुछ चाहिए तो आपको जाके मतलब पूछना भी पड़ेगा, और वही हेल्प होगा, मीन उससे ज्यादा क्या होगा फिर।
Sure. I'm very happy to hear this story from you. You know, the live experience of being there on Shark Tank platform, speaking to all the sharks and to get them to buy your equity in your company, it's absolutely great. If Ritesh had not been there on board, उसने ऑफर नहीं दिया होता था, whom would you have otherwise picked up from
आई थिंक
Aman
अनुपम
Anupam and
मित्तल,
Vinita?
अनुपम मित्तल और अमित जैन,
Okay.
क्योंकि अनुपम मित्तल मतलब मुझे दोनों से काफी कनेक्ट होता है फील, एक तो रितेश से भी और अनुपम सर से भी। अनुपम सर इसलिए कि उन्होंने एक्चुअली में काफी जगह इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उनके उनका ना सेंस ऑफ वो बहुत अच्छा है, आई मीन जो नॉलेज है काफी डिवर्स फील्ड में और एरियाज में है, और एक्चुअली उनके लॉजिक्स होते हैं। जब वो अगर किसी को डील्स नहीं भी देते, आप अगर टीवी पर भी देखोगे तो उनके रीजन्स और फीडबैक इतने अच्छे होते हैं कि वो एक्चुअली में अप्लाई करने लायक होते हैं। मतलब वो आपको ऑथेंटिक रीजन देंगे कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ या फिर क्यों आ रहा हूँ, वो मतलब वैसे नहीं बोलता कि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली में एक्चुअल रीजंस आपको देके ही बाहर होता है।
Great. And when you know that reason, you have an opportunity to improve upon that
यस
part.
यस यस
Absolutely. Wonderful. So, Mitesh, it's been really great speaking to you. Let me just ask you a couple of personal questions, if that is okay with you. Which is
यस
your favorite movie dialogue?
आई थिंक दीवार दीवार मूवी का एक डायलॉग है, मेरे पास माँ है, तो आई थिंक वो भी सूट करता है अभी के सिनेरियो में।
Wonderful. That also brings me to the question that what is the role your mother is playing in your company? I
एक्चुअली
know
भाई
she's there with
मतलब
you on the
शी इज
platform
बीन वेरी वेरी
and she's
इंस्ट्रूमेंटल,
actively involved. Yeah.
या शी इज बीन वेरी आई मीन इंस्ट्रूमेंटल एंड वेरी एक्टिव, क्योंकि हमारे 2-3 SKUs हैं जो एक्चुअली में हमारे घर से शुरू हुए हैं, एंड उनका एक मेजर पार्ट है उसमें, जैसे मैंगो पिकल है, चाय मसाला है, लेमन पिकल है, तो ये बहुत ही स्मॉल साइजेस बैच साइजेस में घर में ही बनते थे, तो ये फिर ऐसे ही मतलब छोटे भाई के सजेशन पे ही डाला इसको पैक करके, कि जब फर्स्ट बेड में इतना कुछ जा रहा है तो एक होममेड कैटेगरी कर दो और ये भी करके देखो, एंड विच एक्चुअली वर्क फॉर अस। तो आज जहाँ पे 100-200 किलो घर के लिए बनता था, वहाँ पे 2000 किलो बनने लगा, और इस साल आई थिंक हम लोग और ज़्यादा बनाएंगे। तो मतलब यहाँ से और बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। प्लस एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है, ऑपरेशन वाला पार्ट अभी मेरा पूरा मम्मी ही हैंडल कर रही है, आई मीन ऑर्डर डेली बेसिस पे जो पैकेजिंग प्रोसेसिंग वगैरह होता है। तो आई थिंक इस एज में आप समझो कि जो एक्टिवनेस है और जो ये आई डोंट थिंक कि हम लोग भी कर पाएंगे, क्योंकि जब मैं उनकी रूटीन देखता हूँ वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और दिन भर वो लगा मतलब लगे रहना, अपने भी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स भी होते हैं। तो आई थिंक वो कुछ ऐसा है कि लिटरली आई फील कि जो एफिशिएंसी है, मतलब मुझे मेरा ये अपना ओपिनियन है कि वो फीमेल्स में ज्यादा है, जब मैं ऐसा देखता हूँ देखता हूँ मुझे लगता है कि मेल्स से ज्यादा फीमेल्स में ज्यादा है वो।
Heads off to her.
Yeah, and also one more thing. I mean, जिस एज पे वो मेरे साथ वहाँ पे गया and she actually faced everything, वो कैमरा है और जो उनका एक नेचुरल सारा रिएक्शन था, आई डोंट थिंक कि उस एज में आई थिंक मैं भी जाके कर पाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा नर्वसनेस होता है। मतलब वो तो कभी ऐसे लोकल में आई डोंट थिंक कि कभी 10K क्राउड के सामने भी आई मीन सी मस्ट हैव बीन यू नो वेंट थ्रू। तो वहाँ पे आपको पता है कि उनको मैं टीवी पे आ रही हूँ और ये कैमरा है, तो वहाँ पे जाके बोलना भी आई थिंक एक बड़ी बात है।
नहीं नहीं बहुत बड़ी बात है एंड आई हैव सीन दैट एपिसोड एंड शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। रियली हैट्स ऑफ टू हर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉलर टाउन सपोर्टिंग।
जब उन्होंने वहां पे बोला ना कि मुझे तो चाहिए, मैं इतने दूर से आया हूँ, मुझे तो मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ, तो रितेश ने बोला कि अच्छा आपको ROI चाहिए, आप इतने दूर से आए हो तो आपको अपना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए।
एग्जैक्टली यस। सो टू बी एबल टू स्पीक लाइक दिस स्पॉन्टेनियसली रियली नीड्स अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड करेज।
हाँ तो शी टोल्ड मी, मतलब पहले जब लोग अंदर जा रहे थे तो मम्मी ने बोला कि मैं तो अपना जैसा नेचुरल है वैसा ही, तो मैंने बोला ठीक है तो मतलब जैसा है आपका वैसा ही, क्योंकि उनको भी पता है कि वो टेक्निकल एक्चुअली मुझसे ही पूछेंगे और वो तो अंडरस्टूड है।
श्योर या नो आई एग्री विथ यू। सो मित्रेश अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द वन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्पेशली शुड हैव? यू गॉन थ्रू दिस स्ट्रगल एंड यू हैव शेयर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट व्हाट इज इफ यू रियली हैव टू पिनपॉइंट One of those qualities.
I think to bounce back from setbacks. अगर कोई भी आपके setback हो रहा है तो आप वापस बाउंस बैक करो, और patience मतलब एक important parameter है कि वो तो मतलब होना ही चाहिए, impatient मतलब नहीं रहना चाहिए जर्नी में, क्योंकि बिजनेस मतलब चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो स्टार्टअप हो, आप कुछ भी बोल दो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, ये जो जर्नी है आपको बहुत कुछ सिखा देती है। अगर आपके अंदर कोई स्किल सेट नहीं भी है तो वो भी आएगा, बस पॉइंट ये कि आप करते रहो, मतलब
जो बोलते हैं डटे रहो,
डटे रहो, मतलब अगर आपने अपना काम कर दिया रिजल्ट आएगा। बहुत लोग ऐसा होता है कि लिटरली हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं, सब कुछ अपनी जगह सही होता है, प्लेस होता है, कभी कभी रिजल्ट आने में टाइम लगता है। तो वहाँ पे मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको अलग से कुछ करना चाहिए आप करो, लेकिन आप उसको बंद मत करो, मतलब वो रिजल्ट आता है एक दिन, ये तो मैंने देखा है।
आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्पेशली। ऑल आर लुकिंग एट यू एज देयर इंस्पिरेशन देयर ऑन द शार्क टैंक प्लेटफॉर्म, बीइंग एबल टू क्रैक द डील, get Ritesh on board. This has been a dream journey, right from the struggling days, you know, out from the job and being able to reach to this stage. Let's just play a very quick fire round. Mm-hmm. Okay. Good for that. I'll just say a word and you just shoot whatever comes to your mind.
Okay.
Good with that?
Yeah, yeah.
Okay. The first word is dream.
Business.
All right. Food.
Health.
Health. Struggle.
Growth.
Wonderful, wonderful. I'm so happy to hear this. Any final words you want to say to our audience?
मतलब मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा फेथ रखो पूरे प्रोसेस में, जर्नी पे, और ग्रेटिट्यूड भी रखो सबके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, अपने स्टेक होल्डर्स के लिए, और इवेंचुअली वो आपको पे बैक करेगा एक ना एक दिन, क्योंकि मतलब ये जर्नी अपने आप में मतलब ईजी नहीं है, मतलब बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट एक पार्ट नहीं होता, मतलब ये भी होता है कि आपका एंड गोल क्या है। अगर आप आपके अंदर वो है कि आप मतलब चाहते हो कि आप कंटिन्यू करो तो आप कर सकते हो, मतलब बहुत लोग क्या होता है कि जर्नी बीच में छोड़ देते हैं, मतलब बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, मतलब कुछ पर्सनल रीजन्स होते हैं, कुछ फैमिली के प्रेशर में भी होता है, तो मतलब उसको मैं ये कहूँगा कि आप कंटिन्यू करो, आप मतलब ऐसे बीच में गिव अप मत करो उसको, वो कभी ना कभी आपको पे बैक तो करेगा।
आपने फाइनली इतना एक मिनट में आपने बता दिया कि वी नीड फेथ, वी नीड टू हैव दैट ग्रेटिट्यूड,
yes,
we are bound to face struggle, but have conviction and have patience, just and keep doing it and you will be able to achieve your success.
When I wanted to start it na, matlab mere hometown mein basically wo services the nahi, amazon ka pin code bhi active nahi tha, pehle to amazon pe socha tha ki khali list karke sell karunga, to matlab mera to bahar jana bhi ek majboori tha us waqt, kyunki main apne hometown se kar hi nahi sakta tha, mujhe to bahar jana hi tha, chahe main delhi jaau chahe main bangalore jaau, dehradun, to maine jaake kiya। तो अब तो ऐसा है नहीं, आई थिंक अब तो बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, और उस टाइम में अब टाइम में भी फर्क है, आपको अगर आपके पास इंटरनेट है आप घर बैठे कुछ भी कर सकते हो, अब तो आप देखो कंटेंट ही लोग इतना कमा रहे हैं, तो मतलब ऑनलाइन सेलिंग भी पहले से ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ा है टाइम के साथ साथ, लेकिन रिसोर्सेज और टूल्स भी बहुत आए हैं। आपको शिपिंग के लिए चाहिए तो बहुत सारे एग्रीगेटर हैं, आपको उसमें हेल्प मिल जाता है। आपको लिस्टिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप वहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। तो आपको फाइनेंस नहीं है, फंड्स नहीं है, आजकल रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस से इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हो। तो गवर्नमेंट्स के भी बहुत सारे स्कीम्स हैं सीड फंड्स को लेके। तो मतलब है पहले के मुकाबले बहुत सारे मतलब प्लान्स बोल रहे हो आप या फिर स्कीम्स बोल रहे हो, रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो आई थिंक इजी करना आसान है। और आप देखोगे तो इतने 4-5 साल में ना इंटरनेट का पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छा हुआ है, छोटे शहर में भी लॉजिस्टिक्स बहुत इंप्रूव हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हुआ है। जो सामान पहले 10 दिन में आ रहा था वो आज 3 से 4 दिन में डिलीवर होता है। मैं भी दिल्ली से कुछ मंगाता हूँ, 4थे 5वें दिन मेरे पास में होता है। तो आप कोई भी शुरू कर सकता है, पॉइंट ये है कि आप घर बैठे भी कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा सा भी रिसोर्स है, कम पैसे में भी आप स्टार्ट करना चाहो, तो आप ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली या मुंबई से ही शुरू करना है, आप कहीं से भी कर सकते हो।
एब्सोल्युटली द रिसोर्सेज आर अवेलेबल,
यस, एक
व्हाट यू
एक
नीड इज
माइंड सेट होता है
योर
ना कि बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार जो नहीं आते हैं कि क्या होगा, मतलब ईस्ट में वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो आप हर जगह अपने पॉइंट्स हैं, मतलब कुछ जैसे मैं यहाँ पे आया, बहुत सारे मेरे लिए प्लस पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे। एक तो ये कि ऑब्वियसली रेंटल वाला पार्ट बहुत लो है, लेबर चीप लेबर है यहाँ पे एज कम्पेयर टू बिग सिटीज। इंटरनेट है जो बाहर होता है वैसा ही है, लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है, तो कोई ऐसा मेजर चैलेंज नहीं है। हाँ, एक ये हो सकता है कि जब मैं ऑफलाइन करूँ या फिर आगे स्केल करो, एक सर्टेन स्केल के बाद मुझे चैलेंजेस आएगा, लेकिन अभी के लिए आई थिंक टू स्टार्ट विद कोई भी कर सकता है। एक लेवल के बाद आना है तो फिर आप मूव करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप स्टार्ट तो कर सकते हो। आप आई थिंक आप 2 के आप 5-6 करोड़ तक भी जा सकते हो, उसके बाद आप अगर आपको बहुत ही एग्रेसिवली करना है फिर आप कहीं से भी करो। और आजकल तो उसके लिए भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, पैन इंडिया आजकल वेयर हाउसिंग सर्विसेज अवेलेबल है। आपको तो इन्वेंट्री आप वहाँ बेच के स्टॉक भी कर दो, वो पिक एंड पैक करके डिलीवर भी कर देते हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कि आपको वहाँ पे फिजिकली दिल्ली में बैठना है या मुंबई में बैठना है। तो
श्योर,
वो तो विद स्केल तो आप टीम भी कर सकते हो रिस्क।
सो आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, योर पर्सनल स्ट्रेंथ एज वेल एज वेर एवर यू आर वर्किंग जोग्राफिकली, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, फोकस ऑन द स्ट्रेंथ एंड ग्रो टू अ सर्टन लेवल, एंड वंस यू रीच टू अ सर्टन लेवल ऑब्वियसली देन
बट टू
यू
स्टार्ट
कैन
विद यू
अदर
कैन स्टार्ट, आई मीन
एवेन्यूज।
फ्रॉम एनीवेयर, आप घर से भी कर सकते हो, आप कॉलेज में आजकल तो कैंपस से भी कितने लोग करते हैं, तो आई थिंक वो हो जाता है। और हम लोगों ने तो फिर भी लेट किया है, आजकल तो आप देखोगे तो स्कूल और कॉलेज से कितने अच्छे अच्छे स्टार्टअप भी आ रहे हैं जो
राइट,
फिर भी टेक बेस्ड है या फिर इंटरनेट बेस्ड है।
सो यू आर सेइंग रिसोर्सेज आर अवेलेबल, व्हाट यू नीड इज विल पावर, योर कन्विक्शन एंड पैशन इन योर व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू,
राइट,
दैट्स द मैसेज फॉर द स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स। ऑल राइट मित्रेश, थैंक यू सो मच, इट्स बीइंग सच अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू, एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर हैविंग रितेश ऑन बोर्ड फॉर योर फर्स्ट बर्ड ऑर्गेनिक्स। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट that you really grow and become a very successful company.
Thank you, sir.
Thank you
Thank
so much. All right, friends. So this is Mitresh Sharma for you. We will have the details of Mitresh in the comments box. Anybody wants to reach out to him for any reason, they are happy to do so. Thank you very much for being there with us, friends. And I look forward to see you in the next week podcast. Thank you.
A top-rated podcast, Business Veda, is must-listen for every business owner. So share this with someone who will find this podcast useful. Remember to follow the podcast and tune in next week for yet another business lesson from Malay Damania.